श्री वृंदावन धाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एक बार सब लोग हृदय से पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज के इस 1 अक्टूबर के नित्योत्सव कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हिज ग्रेस भगवान प्रभु की आशीर्वाद और कृपा चाहता हूँ और यहाँ बैठे हुए सभी वरिष्ठ भक्तों का भी आशीर्वाद चाहता हूँ। आज हम कार्तिक मास के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और मुझे ये भी बताया गया है कि राधा कुंड के ऊपर नाटिका भी है ना प्रस्तुत होने वाली है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाला कार्तिक महीना हमारे जीवन में सर्वाधिक आध्यात्मिक लाभ हमको प्राप्त करें। तो ये जो कार्तिक का महीना है ये विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी की कृपा से संपृक्त है, क्योंकि राधा रानी जो अंतिम प्रेम और भक्ति है उसका उगम है और ये महीना उनको बहुत प्रिय है। इसलिए वास्तव में इसका नाम दामोदर मास है लेकिन ये ऊर्जा व्रत कहते हैं उसको, ऊर्जा व्रत यानी ऊर्जा देवी जो राधा रानी है उनकी कृपा से ये महीने की सारी कृपा संपन्न होती है। तो ये महीना जो है इसकी प्रधान लीला जो है वो दामोदर लीला है, लेकिन साथ साथ में इस महीने में बहुत सारी भगवान की बाल लीलाएं भी संपन्न हुई है और भगवान की कुछ विशेष लीलाएं भी इसमें संपन्न हुई है। जैसे कि अभी अपने रास नृत्य देखा, इस रास नृत्य के बाद में श्रीमद् भागवत में गोपी गीत का वर्णन है वो भी इसी महीने में हुआ, फिर वेणु गीत, फिर भ्रमर गीत इसी महीने में संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान के विरह में जब गोपियाँ वृंदावन में भटक रही थी जिस इन गीतों को गाते हुए, तो जो इमली तला की लीला है जहाँ पर भगवान को उन्होंने राधा रानी के ऊपर ध्यान करते हुए गौर वर्ण को प्राप्त करते हुए देखा, श्री कृष्ण भगवान को इमली तला के नीचे बैठते हुए, सब कुछ भगवान लेकिन वर्ण स्वर्ण कांति इस अद्भुत रूप में देखा, उसी इमली तला की लीला भी इसी महीने में हुई है। फिर गोवर्धन पूजा इस महीने में हुई है, गोवर्धन पूजा, फिर इंद्र के द्वारा 7 दिन 7 रात वर्षा, फिर उसके बाद में भगवान का गिरिराज को उठाना 7 दिन 7 रात के लिए, गिरिराज को नीचे रखना, भगवान के द्वारा गोवर्धन की परिक्रमा सबसे पहली गोवर्धन पूजा के दिन जो प्रतिपदा के दिन आती है ये भी इसी महीने में हुआ है। फिर इस महीने के कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है उसमें राधा कुंड का निर्माण हुआ है, अरिष्टासुर का वध हुआ है और राधा कुंड का निर्माण हुआ है बीच रात में। इसी महीने में भगवान ने नरकासुर का वध किया है नरक चतुर्दशी के दिन। इसी महीने में भगवान ने नरक चतुर्दशी के बाद वाले दिन जब दिवाली कहते हैं उसको, उस दिवाली के दिन भगवान ने भगवान को बांधा गया माता यशोदा के प्रेम के द्वारा। उसी दिन प्रभु रामचंद्र का अयोध्या में आगमन हुआ त्रेता युग में, इसी महीने में अयोध्या में सब लोग ने दीपक चलाकर प्रभु रामचंद्र का वनवास के बाद में सीता देवी के साथ स्वागत किया, इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। इसी महीने के शुद्ध पक्ष में अष्टमी के दिन भगवान जब 5 साल के हुए तो भगवान को बड़ी गायों का जिम्मेदारी सौंपा गया, उसको हम गोपाष्टमी कहते हैं। बड़े उत्साहपूर्वक ब्राह्मणों को बुलाकर विधिपूर्वक नंद बाबा ने, यशोदा माई ने श्री कृष्ण भगवान को बड़ी गायों का जिम्मेदारी गाय चराने के लिए सुपुर्द किया। प्रतिपदा के दिन इसी महीने में, शुद्ध पक्ष की प्रतिपदा के दिन जिसको हम बलि प्रतिपदा कहते हैं, आप सब लोगों को पता होगा कि बलि महाराज को वामन देव ने उनके शीश पर तृतीय कदम रखते हुए उनको सूतल लोक में भेज दिया। इस दिन बलि महाराज भगवान के वरदान के अनुसार एक बार दोबारा पृथ्वी पर आते हैं साल में एक बार, और उनका जो राज्य था वो कैसे चल रहा है उसको देखने के लिए आते हैं, और सब लोग दीपक जलाकर ये उनको बताते हैं कि हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और खुशी में हैं, आनंद में हैं, इसलिए बलि प्रतिपदा हम मनाते हैं उस भाव से। उसके बाद में इसी साल इसी शुद्ध पक्ष में जब द्वितीया आती है तो उसको यम द्वितीया कहते हैं, जिसको महाराष्ट्र में भाऊबीज कहते हैं, यूपी में भैया दूज कहते हैं। इस दिन यमुना देवी ने अपने भाई के साथ अपने ही जल में स्नान किया था हाथ को पकड़कर, और उसके बाद स्नान होने के बाद यमुना देवी ने अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने प्रिय भाई को खिलाया था। इस उपलक्ष्य में आज भी ब्रजभूमि में आप जाएंगे तो विश्राम घाट पे आप देखेंगे 80 साल की बहन, 81 साल का भाई भी, हाँ बाकी सारे तो है ही, लेकिन इतने बुढ़े बुढ़े भी हाथ को पकड़कर बहन के नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर बहन के ही घर जाकर भोजन करते हैं। और ऐसा कहा गया है कि इस दिन सारे भाइयों को केवल बहन के ही हाथ से भोजन करना चाहिए, क्योंकि इसका वरदान ये दिया गया है कि जो बहन के हाथ का भोजन इस दिन ग्रहण करता है उसको गौलोक प्राप्त हो जाता है, यानी कि प्रसाद। तो ये भैया दूज का भी महात्म्य इसी महीने में है। फिर शुद्ध पक्ष के एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, आप सब जानते हैं देव शयनी एकादशी आषाढ़ एकादशी के रूप में जानते हैं, तो उस दिन सारे देवता लोग शयन करते हैं यानी सो जाते हैं, तो ये प्रबोधिनी एकादशी के दिन सब देवताएं जग जाते हैं और सब लोग व्रत करते हैं इस दिन। और इस एकादशी के बाद द्वादशी के दिन भगवान की रथ यात्रा निकालते हैं, भगवान जब सो के उठते हैं तो उनको सब मंदिरों में रथ यात्रा करते हैं, साउथ इंडिया में, कर्नाटक में, यूपी में, सब जगह रथ यात्रा होती है, मंदिर में होती है, बाहर नहीं होती। और भीष्म पंचक का पालन भी इन 5 दिनों में होता है, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। और भीष्म पंचक के द्वारा भी वर्णन किया गया है हरि भक्ति विलास में कि भीष्म पंचक के व्रत का विधिपूर्वक पालन करने से हम सब लोगों को गौलोक धाम की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद जो लास्ट दिन है, कार्तिक पूर्णिमा, इसको भी रास पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन भी भगवान ने रास रचाया है और इस दिन शालिग्राम और तुलसी देवी का, वृंदा देवी का विवाह होता है और इस तरह से ये कार्तिक मास संपन्न होता है। बहुत पवित्र मास है, भगवान ने अपनी गिनी चुनी लीलाएं जो मैंने वर्णन किया भी है और नहीं भी किया है, ऐसी बहुत सारी बाल लीलाएं इस महीने में भगवान ने की है, और सबसे प्रधान लीला है वो है दामोदर लीला। सब लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करना यहाँ मुमकिन नहीं है समय के भाव से, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो इनके बारे में श्रवण करना बहुत हृदय के लिए पवित्र कार्य है। आप सब जानते हैं भगवान शरारत करते हैं, माखन चुराते हैं, मटका फोड़ते हैं तो माता उनको दंड देती है, हाँ बहुत सारी सीख है इस लीला में, इतना महात्म्य है इस लीला का कि इस लीला को एक अष्टक के रूप में लिखा गया है और उस अष्टक के रूप में सुबह और शाम भगवान को दीप दान करते हुए गाया जाता है, इतना ये सुंदर लीला है भगवान की। तो भगवान को यशोदा माई ने माखन चुराते हुए पकड़ा और उखल से बांध दिया, क्योंकि उखल भी उसके उनके गुने में, उनके क्राइम में समीर सहभागी थी, इसे उसको बांध दिया गया। और फिर भगवान ने इस उखल को पेट पे बांधे हुए होते हुए उसको खींच खींच कर वो घर के आंगन के बाहर ले गए, और फिर दो पेड़ों को उन्होंने गिराया, और वो दो पेड़ कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे, जिनको शाप प्राप्त हुआ था, जिन्होंने नारद मुनि के सामने नग्न अवस्था में दुराचार किया था, हाँ गैर व्यवहार किया था, तो उनको पेड़ होने का शाप मिला था, और फिर भगवान ने उनको गिराकर उनका उद्धार किया, उनको प्रेम भक्ति का भी वरदान दिया। तो इस लीला में एक, ये सब चीज़ जानते हैं आप सब लोग, इसमें एक चटपटी बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। जब भगवान को बांध के रखा था तो कुछ लोग बड़े खुश थे। जो लोग हमेशा माखन चोरी भगवान करने के बाद में पकड़े जाते थे और भगवान भाग जाते थे, वो लोग बड़े खुश थे, बोले हमेशा हम लोग पकड़े जाते, आज आप पकड़े गए हैं, बहुत अच्छी बात। और बाकी लोग लो रहे हैं क्योंकि वो भगवान के साथ भागते थे हमेशा, आज भगवान बंधे हुए हैं और वो भाग रहे हैं, भाग मतलब फ्री हैं, उनका बड़ा दुख हो रहा है। कुछ सखियाँ ताली पीट रही हैं, उनको बड़ी खुशी हो रही है कि हमेशा हमें आकर घर में मूर्ख बना के चले जाते हो, ऐसा बहस करते हो कि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, हमारे घर में बार बार चोरी करने पर कंप्लेंट करने पर भी कोई बोल नहीं पाता है, उनको सिद्ध नहीं कर सकते कि ये चोर है, हमेशा हमारी क्या कहते हैं निंदा होती है कि आप लोग बड़े मेरे बच्चे पर क्रोध करते हो या कुछ द्वेष रखते हो, बार बार कंप्लेंट करते हो, कभी तो हाथ में लेके नहीं आते हो, अच्छा हो गया आज तुमको बांध दिया। तो कुछ लड़कियां ताले पीट रही है, कुछ हंस रही हैं, कुछ लड़कियां रो भी रही हैं कि अरे बेचारा कन्हैया बंध गया। तो सब ने कोशिश किया उनको छोड़ने का, लेकिन छुड़ा नहीं पाए वो। ग्वाल वालों ने भी उनको मित्रों ने छोड़ने का कोशिश किया, लेकिन वो माता मैया ने, मैया यशोदा मैया ने बांधी हुई गांठ थी वो वात्सल्य रस की, छोड़ नहीं पाए कोई उसको, तो सब लोग चले गए। फिर बलराम जी आए, और बलराम जी ने कहा अरे तुम्हारी ये हालत किसने की? बोला ऐसे ऐसे हो गया, मुझे मैया ने बांध दिया और रोने का नाटक किया। बलराम जी कहते कोई बात नहीं, मैं मैया से बात करूँगा, मैं जाऊँगा और आपका समस्या का समाधान करूँगा। तो जाते मैया को, मैया आपने कन्हैया को बांध दिया? मैया बोलते हाँ बिल्कुल, तो दंड देना ही चाहिए, कितनी बार मैं परेशान होती हूँ उसकी शिकायत सुनते सुनते, आज मेरे हाथों में मेरे रंगे हाथ मैंने उसको पकड़ा है, दंड देना आवश्यक है। तो बलराम जी कहते जानते हैं वो कौन है? जो परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक है, सारी सृष्टि के रचयिता है, सारी सृष्टि के नियंत्रक हैं, सारी सृष्टि के विध्वंसक है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसा पूरा परम भगवान का वर्णन करते जा रहे जो सत्य है, कुछ गलत नहीं है। श्री कृष्ण का सार्वभौमत्व का वर्णन कर रहे हैं, उनका अधिकार, बोलते हैं जब भवें उठाते हैं तो देवता भी कांपते हैं, चंद्र सूर्य उनकी इच्छा से घूमते हैं। उस कन्हैया को आपने बांध कर रखा है, लेकिन ब्रज का एक ऐसा एक महात्म्य है, ब्रज में माधुर्य रस जो है ना वो इतना प्रभावी है, और ये सब बातें ऐश्वर्य रस की है, यानी कि भगवान कितने महान है, निर्माण करता है, विध्वंसक है, हम मेंटेन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं, ये सब ऐश्वर्य की बात है उनकी, तो ये टिकती नहीं है माधुर्य के सामने। तो बोला अच्छा माता सुन रही है, ओ फिर बोले तू कौन है? तो मैं तो अनंत शेष हूँ, शेष नाग हूँ मैं, संकर्षण का अवतार हूँ, सारा जितने भी निर्माण इसने ये करता है मेरे शीश पे धारण करता हूँ, तुम जिस भूमि पर खड़े हो वृंदावन धाम वो मेरे अग्र फन पर मैं धारण करता हूँ, मैं इनका अवतार हूँ, लीला अवतार हूँ। तो ये डंडा उठाती है, कहती है सारे अवतारों को मेरे घर में होना था, डंडा उठा जाते भाग जाते हैं। ये बहुत सुंदर बात समझने वाली है इसके अंदर, मैया कहती है कि सारे अवतारों को मेरे ही घर में होना था। इसका कारण यह है कि बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों मिलकर मैया को उनके ऐश्वर्य का बखान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैया का जो वात्सल्य है, माधुर्य वात्सल्य, हाँ जो ऐश्वर्य से कोई संबंध नहीं उनका, वो इतना गहरा है कि सारी ये बातें जो है उनके सामने टिक नहीं पाती, जैसे कि फिसल जाती है ना, जैसे कोई फिसलन पहाड़ी होती है ना, तो हम लोग पैर रखेंगे तो फिसल जाते हैं उसके। तो ये ब्रज का महात्म्य है, ब्रज के अंदर भगवान ने कई बार कोशिश किया अपना ऐश्वर्य दिखाने का, लेकिन फिर भी कभी भी उन लोगों ने उनको माना नहीं कि एक नारायण है। एक बार नारायण होकर खड़े हो गए वो बीच में रोड पे खड़े हो गए, तो सब गोपी ने उनको भी पूछा कि आपने कृष्ण को देखा है क्या? तो नारायण ने अपने चार भुजा में से एक भुजा को इस्तेमाल किया, बताया इस तरफ गए। लेकिन जब राधा रानी आई और राधा रानी भी रोते रोते पूछा कि अपने कृष्ण को देखा है, वास्तविक रूप में उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु जो उनकी माता पिता पूजा करते हैं वो स्वयं सामने खड़े हैं पूरे ऐश्वर्य के साथ, दंडवत किए बिना उनको पूछ रहे हैं कि कृष्ण को कहीं देखा है क्या आपने। एक बार राधा रानी जब आई तो कृष्ण के दोनों भुजाएं शंख चक्र पद्म गदा के साथ लुप्त हो गए और वो जबरदस्ती द्विभुज हो गए। जब कोशिश पूर्वक चार भुजा वाले बन गए थे, दो भुजा वाले बन गए, उनके नियंत्रण के बाहर बनाए रखना मुमकिन नहीं था उनको अपना ऐश्वर्य, अपने ऐश्वर्य को मेंटेन नहीं कर पाए वो, क्योंकि ब्रज के लिए सब लोग सबके लिए वो दो भुजा वाले सिद्ध साधे ग्वाल बाल थे, उनके मित्र थे, उनके सखा थे, उनके पुत्र थे, उनके बालक थे, एक सामान्य गौचारण करने वाले बालक थे वो वैश्य कम्युनिटी के। तो ये दामोदर लीला की एक बीच में चटपटी बात है और आप सब जानते हैं उनकी सीख हमारे लिए ऐसी है कि जब मैया दो उनको बांधने का कोशिश कर रही थी तो हर समय कितनी भी रस्सी जोड़ने के बाद में दो दो उंगली कम पड़ती थी, एक है प्रयास और एक है कृपा। जब उनका प्रयास पूरा हुआ तो एक उंगली पूरी हुई, जब भगवान ने तय कर लिया कि अभी बंद जाना है, अभी और लीला नहीं करना है, आगे माता थक गई है, माता परेशान हो रही है, माता के कपाल पर घर्म बिंदु आ रहे हैं, तभी और उनको परेशान नहीं करना है, वो इतना प्रयास कर रही है, तो भगवान ने जब कृपा से मन में तय कर लिया तो भगवान बंद गए। नहीं तो भगवान को कौन बांध सकता है, तो सारे विश्व को बांध के रखते हैं, सारे विश्व को चलाना सिखाते हैं, सारे विश्व का चयन नियंत्रण करते हैं। तो ये दामोदर लीला में भगवान कुबेर के पुत्रों का उद्धार करते हैं और सत्यव्रत मुनि इसको गाते हैं। ये जो दामोदर लीला है इसका कार्तिक महीने में क्यों, हर दिन जो भी स्मरण करता है, इसका चिंतन करता है, उसको जीवन के अंत में गौलोक प्राप्त होता है, ये भागवतकार बताते हैं, सत्यव्रत मुनि भी बताते हैं। तो ये चिंतनीय लीला है, प्रातस्मरणीय लीला है और ये कार्तिक महीने में दीपदान के साथ में हम उनको संपन्न करते हैं, बड़े भाव से गाते हैं, साथ साथ में भगवान को प्रेम का दीपक भी अर्पण करते हैं। दूसरी लीला है वो जो राधा कुंड का अपियरेंस, आप सब जानते हैं जब कंस के द्वारा अरिष्टासुर आया, धर्म का प्रतीक बनकर आया, वो धर्म का प्रतीक यानी बैल, इसके चार भुजा चार जो पैर हैं उसके, वो धर्म के चार मुख्य स्तंभ हैं, वो ऐसा रूप धारण करके आया, एक भूलभुलैया एक झूठ मूठ का धार्मिकता लेके आया वो, और भगवान ने उसका वध कर दिया। बड़ी लंबी कहानी है वो, भगवान ने कैसे वध किया, बड़े शूरवीरता के साथ में इतने भयंकर शक्तिशाली योगी सिद्ध राक्षस का भगवान ने बड़े प्रेम से वध किया, यानी बड़ी लीला से वध किया, कोई कष्ट नहीं हुआ उनको। और जब वो उस वो बैल को मारकर जब गोपियों के सामने आए, ये बैल जो था वो शाम को आया था, तो समझो कुछ समय मारने में लीला में गया होगा, उसके बाद शाम ढल चुकी थी और सब गोपियों को मिलने के लिए भगवान आए, तो भगवान ने गोपियों ने कहा कि आपसे हम नहीं मिलेंगे। तो क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने गोवंश का वध किया है और गोवंश हमारे लिए पूजनीय है, सारा ब्रज जो है वो गोवंश के ऊपर आधारित है और हम गाय और बैल हमारे लिए वंदनीय पूजनीय है और आपने उसका वध किया। तो भगवान कहते नहीं, वो तो राक्षस था। बोले हम नहीं जानते कुछ, आपने आपको गोवंश के हत्या का पाप लग गया है, तो बोलो क्या करना है। बोले आप अगर सारे तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान नहीं करेंगे तब तक इस गोवंश के पाप को आप धुला नहीं सकते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं पूरे दुनिया में भ्रमण क्यों करूं, क्या जरूरत है मुझे भ्रमण करने की, मैं तो सारे तीर्थों को यहीं बुला लेता हूं, सारे नदियां सारे कुंड सारे झरने जितने भी पवित्र पर्वत जितने भी है सारे धाम तीर्थों को मैं यहीं बुला लेता हूं। स्मरण मात्र से भगवान सारे तीर्थों को बुला लेते हैं और कहते हैं देखो सब प्रकट हो गए। तो राधा रानी और गोपियां कहते किधर है, हमको नजर नहीं आ रहे। तो एक एक करके एक एक धाम और तीर्थ सामने आते हैं, मैं शिर सागर हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं श्वेत द्वीप हूँ, मैं ताम्रपर्णी हूँ, हर प्रकार के देवी और देवताएँ, हाँ क्योंकि नदी देवियाँ हैं और पर्वत जो है वो प्रभु हैं देव हैं, वो सब आकर प्रणाम करते हैं और भगवान उनको आदेश देते हैं कि जाओ। वो क्या करते हैं, जैसे ही गोपियाँ कहते हैं कि आपको स्नान करना होगा, वैसे उसी समय अपने पैर के क्या कहते हैं हील एड़ी से वो जमीन को धक्का देते हैं तो एक गड्ढा पैदा होता है और बड़ा विशाल कुंड उत्पन्न होता है वहाँ पर, सारे तीर्थ जितने पर्वत हैं, जितने नदियाँ हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुंड हैं, वो सब उसमें प्रवेश करते हैं। बाकी पर्वत तो नज़र नहीं आते, अदृश्य रूप में प्रकट करते प्रवेश करते हैं, लेकिन नदियाँ जल के रूप में प्रवेश करते हैं। तो विशाल कुंड वहाँ निर्माण होता है, उसका नाम श्याम कुंड है। और बड़े प्रेम से श्री कृष्ण भगवान और गोपाल जो हैं उसमें स्नान करते हैं, और बड़े धीट और बड़े गर्विष्ठ होकर बाहर आते हैं और कहते हैं, गोपियों हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप हमारी बात करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि आपने राक्षस वंश में आए हुए बैल का पक्ष लेकर हमसे विवाद किया है, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होगा? तो कहते हैं, आपको भी विश्व के सारे तीर्थों में जाकर स्नान करना होगा, दर्शन करना होगा, तब जाकर आप इस पाप से धुल जाएंगे, जिस जो आपने राक्षस का पक्ष लेकर हमसे विवाद किया है, जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। और अगर आपकी इच्छा है तो हमारे जल में भी आप स्नान कर सकते हो, शॉर्टकट। लेकिन राधा रानी कहती है कि आपका कुंड जो है वो अरिष्टासुर के पाप के बद के पाप से दूषित है, इसलिए हम उसमें स्नान करके उसका पाप जो है वो हम पर लेना नहीं चाहते, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो कंकण से जहाँ पर अरिष्टासुर का जो एक अरिष्टासुर जब आ रहा था ना, तो जगह जगह जहाँ पर कदम रखा उसने, उसके चार पैर थे उसके, जहाँ जहाँ कदम रखा उधर धरणी कंप हुआ, धरणी फट गई और कई जगह पर जल का स्रोत निर्माण हुआ था। तो इतने बड़े बड़े गड्ढे उनके पैर के बने हुए थे धरणी कंप के, धरणी के छेदने के साथ। तो ये श्याम कुंड के बाजू में जो धरणी कंप का जो चिन्ह था उसके पैर का, उसी को उन्होंने कंकण से खोद कर एक विशाल कुंड बना दिया। और जो देवता और देवियाँ और नदियाँ वहाँ पर देवियों के रूप में प्रकट है, देव के रूप में प्रकट है, वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रह गए। और राधा रानी ने सारी गोपियों को मानसी गंगा तक लाइन में लगा दिया और मटके से मानसी गंगा का जल जो है वो ट्रांसफ़र करने लगे। आज भी मानसी गंगा वहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, उस समय ज़्यादा दूर होगी, शायद दूर तो होगी निश्चित रूप से। तो कहते हैं कि सारे गोपियों के, राधा रानी के भी कपाल पर पसीने के बिंदु जमा हो गए, स्वेद बिंदु, परेशान हो गए, मतलब जैसे श्रम कर रहे हैं ना वो श्रम के द्वारा। और तो एक एक मटका लेके आएंगे तो कैसे पानी भरेगा, टाइम लग रहा है। तो भगवान कहते हैं कि अरे इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, इनको मौका दो। तो भगवान ने इशारा किया तो एक सारे तीर्थों का प्रतिनिधि वो नीचे आया और राधा रानी के सामने बोला, हे देवी आपकी लीला तो अपरंपार है, आपकी लीला शिव जी, ब्रह्मा जी, इवन लक्ष्मी भी जान नहीं सकती है, सिवाय कृष्ण के आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता है, आप हम पर कृपा करें, हमको सेवा का मौका दें। तो राधा रानी ऐसा श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं, उन्होंने एक तिरछा कटाक्ष कृष्ण पर डाला बहुत मिश्किल भावना से, वो कहा उनको तथास्तु आप आ जाइए। तो उस समय दो जगह पर दो वर्णन दिए गए, एक जगह पर वर्णन दिया है कि राधा श्याम कुंड का बांध तोड़कर सारा जल जो है वो राधा कुंड में प्रवेश कर गया, और दूसरे जगह पर लिखा गया है कि राधा कुंड में अलग से सारे तीर्थ और सारे नदियां और पर्वत और कुंड और सागर सब जमा हो गए दोनों तरफ से, तो राधा कुंड का निर्माण हुआ। तो राधा रानी ने वरदान दिया, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये कुंड जो है वो जिसमें जिसके किनारे जो रहेगा, इसमें जो स्नान करेगा, वो मुझसे बड़ा प्रिय हो जाएगा मेरे लिए। वो फिर तभी श्री कृष्ण भगवान ने वरदान दिए हुए हैं, वरदान इस प्रकार से कि राधा कुंड जो है ये मेरे कुंड से अधिक प्रसिद्ध हो जाएगा, और ये कुंड नहीं है, इसमें जल नहीं है, इसमें राधा रानी का द्रव रूप प्रेम मेरे लिए इसमें समाविष्ट है। राधा रानी जितने मुझे प्रिय है उतना ये कुंड प्रिय होगा, जो भी व्यक्ति इस कुंड में स्नान करेगा वो जितनी मुझे राधा रानी प्रिय उतना प्रिय हो जाएगा, और मेरे प्रति वही प्रेम प्राप्त करेगा जो राधा रानी के मन में मेरे लिए है, वो प्रेम इस कुंड में स्नान करने से वो व्यक्ति प्राप्त करेगा जो इसमें स्नान करेगा, और जितनी राधा मुझे प्रिय है उतना वो व्यक्ति मुझे प्रिय हो जाएगा जो इसके किनारे में रहेगा, यहाँ वह बैठ के भजन करेगा, यहाँ का आचमन करेगा, यहाँ का दर्शन करेगा, यहाँ का स्मरण करेगा, कहीं भी और दुनिया में रहकर राधा कुंड का स्मरण करेगा, वो व्यक्ति मुझे उतना ही प्रिय होगा जितनी राधा रानी मुझे प्रिय है। इतना सुंदर वरदान भगवान ने वर्षाव किया है वरदान का। और इस तरह से राधा कुंड जो है रात को 12 बजे अष्टमी के दिन प्रकट हुआ। कुछ लोग उसको सप्तमी की रात को मनाते हैं, कुछ लोग उसको अष्टमी की रात को मनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर वहाँ जा नहीं पाते हो कार्तिक महीने में, तो यहाँ बैठकर आप स्मरण भी करोगे इस लीला का, पठन पठन भी करोगे, श्रवण करोगे, स्मरण करोगे और मन ही मन वंदन करोगे, तो आपको वो सारा लाभ प्राप्त होगा वहाँ जाकर स्नान करने जैसा। चैतन्य महाप्रभु भी उसके बाद में वहाँ पर आए थे। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तब राधा कुंड लिप्त हो चुका था। चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्मरण में दृष्टांत में राधा कुंड का दर्शन किया और फिर वो दो छोटे छोटे तालाब नहीं थे, वो थोड़े से पडल मतलब छोटे छोटे से पानी के थे, उसमें कुछ छलांग लगाई, स्नान किया और जनता के सामने लुप्त राधा कुंड को श्याम कुंड को प्रकट किया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसको दोबारा बनवाया और आज जो आपको दिखाई पड़ता है वो रघुनाथ दास गोस्वामी के मेहनत का परिणाम है। उन्होंने दोबारा राधा कुंड श्याम कुंड को विश्व के नज़रों में प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को प्रार्थनाएं की हैं। वो कहती है महाप्रभु जी ने स्नान करने के बाद नृत्य किया और उनका नृत्य भाव विभोर नृत्य देखकर सब लोग प्रभावित हो गए। और उन्होंने नृत्य करने के बाद जब वो थोड़े शांत हो गए तो उन्होंने वर्णन किया, प्रार्थना किया कि सभी गोपियों में राधा रानी भगवान को बड़ी प्रिय है और ये राधा कुंड राधा रानी को प्रिय है, श्री कृष्ण को प्रिय है और राधा और कृष्ण यहाँ पर प्रेम की लीलाएँ करते हैं, रास रचाते हैं, राधा कुंड राधा रानी को बहुत आकर्षक लगता है, श्री कृष्ण भी बड़े प्रेम भाव में आते हैं जब राधा कुंड में आते हैं। इसी राधा कुंड में सवेरे 11:48 में राधा रानी पहुंचती है। राधा रानी भगवान को एक वादा किया कि मैंने आपको टोका ज़रूर बैल को मारने के बाद में, लेकिन अब आपको मैं ऐलान करती हूँ कि चाहे आप ऐसे 100 बैलों को भी मारेंगे फिर भी मैं प्रेम से आपके कुंड में स्नान करने आऊँगी। तो रोज़ सुबह 11:48 पर अपने सखियों को लेकर पांडव घाट में वो स्नान करती है। उसके बाद में श्याम कुंड में स्नान करती है और श्याम कुंड के सामने एक पाशा खेला घाट है, वहाँ पर चौसर का खेल रोज स्नान करने के बाद खेलते हैं और उस चौसर के खेल में कृष्ण को हरा देते हैं, पाशा खेला घाट। इस तरह से ये राधा कुंड श्याम कुंड की लीला चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन की। और इसके बाद जब राधा कुंड का निर्माण हुआ तो उसी रात को भगवान ने राधा कुंड के किनारे रासलीला रचा है, रासलीला का आनंद लिया सब गोपियों को। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो कार्तिक मास है उसमें भगवान ने नरकासुर का वध किया है। नरकासुर आप जानते हैं जब वराह देव और पृथ्वी देवी का मिलन हुआ, जब पृथ्वी देवी को भगवान गर्भोदयी सागर के तल से उठाकर अपने कक्ष में रख रहे थे, उस समय जो संबंध हुआ भगवान का और भूमि देवी का, उससे भौम का जन्म हुआ। वराहदेव और भूमि देवी के पुत्र के रूप में भौम का जन्म हुआ। आगे जाकर भूमि पुत्र भौम ने बाणासुर के साथ संग किया और भौमासुर बन गया और वही नरकासुर है। तो भगवान ने बड़ा युद्ध करके द्वारका जिला में जाकर युद्ध करके प्रतिपदा के दिन चतुर्दश के दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया, वो इसी महीने में हुआ। इसके बाद में शुद्ध पक्ष के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन गोवर्धन पूजा भगवान ने किया। आप सब जानते हैं इंद्र की पूजा करने का सब लोगों ने प्लानिंग किया था, यज्ञ हो रहा था नंद महाराज के नेतृत्व में, हर साल की तरह इंद्र को पूजा करते थे। तो भगवान जानते थे, अंतर्यामी भगवान जानते थे कि इंद्र को गर्व हो गया है, तो उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंद्र की ड्यूटी है पानी देना, जैसे वायु की ड्यूटी है हवा देना, आप लोग वायु की पूजा तो नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, इंद्र पानी देते हैं, फिर वो ज़मीन से घास आती है, फिर हमारे गाय खाते हैं उसको, फिर गाय दूध देती है, फिर हम दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, बेचते हैं, फिर हमारा जीवन चलता है, तो इंद्र की पूजा करना बहुत आवश्यक है। लेकिन भगवान बड़े तर्क से सम्मोहिनी भाषण से उनको इंद्र की पूजा कैंसिल करवाते हैं और उसी अरेंजमेंट में गोवर्धन की पूजा करवाते हैं। और भगवान बड़े डिटेल में उनको बताते हैं कि वो कैसे कैसे करना है, सब लोगों को जितना भी सामान है वो सब लेके आना है और उसमें इतने व्यंजन बनाने हैं कि हर व्यंजन पहाड़ जैसा होना चाहिए, कूट जैसा होना चाहिए, अन्नकूट अन्न के पर्वत बनाने चाहिए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हम लोग जब रहते हैं ना वृंदावन में तो उसको कहते हैं महेश्वरी भवन या उसके आसपास मोदी भवन, ऐसे हम रहते हैं, तो वो जो है वो दान निवर्तन कुंड की जगह है जहाँ पर दान निवर्तन कुंड है। उसके आगे 2 किलोमीटर जाएंगे तो आन्योर गांव आता है। तो दान निवर्तन कुंड से लेकर आन्योर गांव तक 2 किलोमीटर जगह में इतने पर्वत लगाए गए थे भोजन के कि एक उंगली डालने की भी जगह नहीं थी उसके अंदर। हमारे यात्रा में 5000 लोग जाते हैं और 5000 लोग इतना मेहनत करके जितने पर्वत बनाते हैं वो दान निवर्तन कुंड के बाजू में जो थोड़ा सा गार्डन है वो भी नहीं भरता है उससे। ठीक है, ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा में अपने घर का धान्य का और पदार्थ का एक एक कण जो है वो उसका इस्तेमाल किया। शाम को क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, नाश्ते में क्या बनेगा, अगले दिन क्या भोजन करेंगे, सारा चीज़ उसमें उपयोग कर लिया उन्होंने। इतना समर्पण दिखाया उन्होंने और भगवान ने उसको बनाने में इतना समय लगा लेकिन एक झटके में सब खा लिया भगवान ने, एक ही झटके में। और दूसरे क्षण में बोलते हैं आनी और दो, तो तुलसी पत्र दिया। इतनी शरणागति। हाँ, हम लोग भी भगवान को दान देते हैं, कभी भगवान के लिए भोग बनाते हैं, राधाष्टमी को बनाते हैं, जन्माष्टमी को बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में जितना स्टॉक रखा है ना धान्य का, उसका 1% भी हम लोग सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने 100% सामान इस्तेमाल किया। फिर भगवान ने सब दोबारा प्रस्तुत किया, जैसे था वैसे प्रस्तुत किया और डिटेल में लोगों को बताया कि कैसे लोगों को बांटना है उसको। उसका वितरण हुआ और उसके बाद इंद्र ने वर्षा किया 7 दिन और 7 रात तक। एक छोटी सी बात है, हाँ, गिरिराज को जब सब लोग गिरिराज के अंदर आए, पर्वत के अंदर आए, तो सब लोग खुश हो गए। हाँ, सबकी पीड़ा खत्म हो गई, सबका कष्ट खत्म हो गया। पहले बहुत परेशान थे, ठंड में, तूफान में, आंधी में, सब गायें बछड़े घर सब बहते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही पर्वत के नीचे आए सब लोग आनंदी हो गए, एकदम आनंदी हो गए। केवल एक व्यक्ति को वैसे कष्ट हो रहा था जैसे दूसरों को नहीं हो रहा था, वो थे गिरिराज गोवर्धन, जो मूसलधार समर तक बादलों की तरफ से जो भयंकर वर्षा हो रही थी, जिसको जानलेवा वर्षा हो रही थी, जो प्रलय काल में इस्तेमाल उपयोग करते उसका, वो जो भयंकर वर्षा, वो अभी केवल एक व्यक्ति गोवर्धन जी अपने ऊपर धारण कर रहे थे। लेकिन वर्णन ऐसे आता है कि गोवर्धन को जैसे गुदगुदी होती है ना, वैसे अनुभव हो रहा था, जानलेवा जो आघात हो रहा है उसका अनुभव गुदगुदी की तरह हो रहा है। कैसे, क्यों ऐसे, क्योंकि श्री कृष्ण की बाएं हाथ की छोटी उंगली का जो अग्र भाग है वो उनको स्पर्श कर रहा था नीचे से, उसमें से इतना आनंद, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना कृपा बह रही थी, इतना भयंकर आतंक होते हुए भी उनको गुदगुदी जैसा आनंद का अनुभव हो रहा था। हमारे लिए क्या सीख है इसके अंदर, कि हमारे जीवन में अगर कितना भी संकट आए, कितना भी कष्ट आए, लेकिन अगर हम भगवान के साथ संपर्क रखते हैं, इफ वी आर कनेक्टेड टू कृष्णा, छोटे रूप में या बड़े रूप में, उंगली के अग्रभाग के स्पर्श के रूप में या किसी और बड़े स्पर्श के रूप में, लेकिन भगवान के संपर्क में अगर रहते हैं तो बड़े से बड़े दुख भरी घटना भी जो है वो आनंददायी घटना बन जाती है, मजेदार घटना बन सकती है, कष्ट वाली घटना जो है वो सुख वाली घटना बन सकती है। कृष्ण भावना का ये रहस्य है, कृष्ण भावना जो स्वीकार करता है वो दुखों को जाते हुए देखता है और सुखों को आते हुए देखता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है, जैसे गोवर्धन ने अनुभव किया, सब भक्तों ने किया है। मतलब गिरिराज की लीला में ये बहुत बड़ा शिक्षा है हमारे लिए कि भगवान पर हमको श्रद्धा रखना चाहिए और चाहे दुख हो या सुख हो, भगवान के साथ में हमें संपर्क बनाए रखना चाहिए। वी हैव टू बी ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस, वेदर वी आर हैप्पी और अनहैप्पी, वेदर वी आर सफरिंग और नॉट सफरिंग। तो उसके बाद में भगवान ने गिरिराज को नीचे रखा, क्योंकि 7 दिन और 7 रात समर तक बादल अपनी पूरी शक्ति के साथ वर्षा करने के बाद में क्या हुआ, उनका जल ही समाप्त हो गया, टैंक खाली हो गए सब। तो इंद्र भाग भाग के आए, उन्होंने वज्राघात किया, वज्र का परिणाम भी नहीं हुआ। तब इंद्र समझ गए कि मेरे समर तक बादलों को लीलया यानी आसानी से परास्त करने वाला केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो है भगवान। तो समझ गए, अरे ये तो बालक नहीं, ये तो भगवान है। तो ऐरावत भट पे बैठ कर आ गया नीचे, जिस तरफ से आया भगवान ने उस तरफ देखा, उस तरफ से आया तो भगवान ने इस तरफ देखा, मतलब निग्लेक्ट किया उसको, ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। फिर इंद्र भाग गया, भाग के स्वर्गलोक में गुरु जी के पास गया, बृहस्पति के पास। वो बोले, तुमने बहुत जघन्य अपराध किया है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक ट्राई कर सकते हो, नीचे जाओ और कोई भक्त को भगवान के पकड़ो, उनके चरणों में शरण ले लो, और वो अगर सिफारिश करेंगे तो कुछ हमारे लिए चांस है। इतने बड़े देवेंद्र, देवताओं के राजा, नियंत्रक, सारे 7 लोगों के नियंत्रक और राजा, एक यक्षित, यानी यक्षित नहीं थी तो महान भक्त है भगवान के, लेकिन उनके उसके पद के सामने तो कुछ भी नहीं है वो, भौतिक दृष्टि से, हाँ लौकिक दृष्टि से। एक गाय के चरणों में गिरे वो और गाय को विनती किया गिड़गिड़ा के। जब ये नम्रता को स्वीकार किया उन्होंने, अपनाया, तो गाय हो जो है ऐसे बोली नहीं, अभी आए हो उस पार, हाँ इतनी वर्षा कर रहे थे सबको मारने के लिए, और जाओ चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं करूँगी आपके लिए मैं, तुम अपराधी हो, तुमने हमने मारने का कोशिश किया, ऐसा गाय ने नहीं बोला। तुरंत गाय ने स्वीकार किया उसको और तुरंत भगवान के पास ले गई। तब भगवान जब इंस्पेक्शन कर रहे थे कि ब्रज में कितना नुकसान हुआ है, तब पहली बार भगवान ने सुरभि गाय की कृपा के वजह से इंद्र की ओर देखा, इंद्र की ओर देखा, इंद्र ने याचना किया, शरणागत हो गए वो। तो भगवान ने कहा दोबारा ना ऐसी मस्ती मत करना, चेतावनी दिया उनको। फिर इंद्र ने उनका पूजा किया, इंद्र ने अभिषेक करना चाहा। तो गोविंद कुंड का निर्माण भी इसी महीने में हुआ है। गोवर्धन पूजा के 7 दिन 7 रात बाद 8वें दिन ये सब लीला हुआ है, उसके बाद में गोविंद कुंड का निर्माण हुआ है। इंद्र ने आकाशगंगा का जल, सुरभि का दूध, वरुण का सिंहासन, वायुदेव की छतरी, ऐसा सुंदर दिव्य ऐश्वर्यमयी संपन्न वातावरण बनाकर भगवान का दिव्य अभिषेक किया। वो जो जल और जो आकाशगंगा का जल और जो सुरभि गाय के दूध जब इकट्ठा हुआ तो गोविंद कुंड का निर्माण हुआ, जो साक्षात भगवान का चरणामृत है। जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड भी भगवान कृष्ण और गोपियों का, ग्वाल बालों का चरणामृत है, साक्षात प्रेम का प्रकरण है वो, वैसे ही गोविंद कुंड भी है, प्रकट हुआ और आज भी विराजमान है वो गोवर्धन के बीच में। ये गोवर्धन लीला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि गोवर्धन लीला में भगवान ने अहम कैसे हमारे लिए घातक है ये लीला के द्वारा समझाया। इंद्र का इस्तेमाल करके, इंद्र को इस नाटक का किरदार बनाकर हम सबको ये शिक्षा दिया उन्होंने कि भगवान के भक्ति में गर्व नहीं करना चाहिए कभी भी। अहम जो है वो भगवान को हमसे दूर कर देता है, भगवान बड़े दूर चले जाते हैं, और अहम को रखना बहुत घातक है, अहम को निकालना कोई खेल नहीं है। लेकिन एक शुद्ध भक्त की कृपा से, उनके चरणों में शरण जाने से ये अहम का इलाज हम कर सकते हैं। लेकिन जब तक अहम है तब तक भगवान नहीं है, जब अहम नष्ट होता है तो भगवान तो वही है। जिस व्यक्ति को, व्यक्ति ने अहम नष्ट कर दिया है या अहम को त्याग कर दिया है भगवान के भक्तों की सेवा में, उनके लिए भगवान एकदम पास में है, हृदय में बैठे हुए। और जिसके पास अहंकार है वो हृदय में बैठे हुए भी उसके लिए अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, दूर है बड़े उनके लिए। दो चीज़ें, एक अहंकार है, एक ढोंग। ढोंग जब होता है तो भगवान दूर चले जाते हैं, कोई भक्ति भक्ति का वहाँ पर परवरिश नहीं होती जहाँ पर ढोंग होता है। इसलिए हम इनको, हमको इस ढोंग से और अहंकार से बचना चाहिए। फिर उसके बाद में गोपाष्टमी में भगवान को नंद बाबा ने और यशोदा माई ने बड़े गाय का भार सौंप दिया। सब ग्वाल बालों को चिढ़ाते थे, अरे कन्हैया तुम तो बड़े हो गए हो, फिर भी तुम पर माता पिता का विश्वास नहीं है, माता पिता ये विश्वास रखते नहीं कि तुम संभाल पाओगे नहीं पाओगे। तो बड़े एक दिन नाराज हो गए कृष्ण, उनको उनके दोस्तों ने इतना पीड़ित किया, ऐसा बोल बोल के कि तुम योग्य नहीं हो, योग्य नहीं हो, तुम पर माता पिता का विश्वास नहीं है। उनको बड़ी इच्छा थी, अब गड़ी गायों को भी इच्छा थी उनके साथ चारण करने के जाने के लिए। तो गाय भी आकर भगवान को, भगवान के माता पिता को बोले हमको भी जाना है उनके साथ। लेकिन उस शाम को बड़े परेशान होकर आए वो, ना आरती स्वीकार किया, ना मिठाई स्वीकार किया, ना पंचामृत अभिषेक स्वीकार किया, ना लोरी सुनी, सीधा जाके सो गए उल्टा मुंह करके। और उसी दिन घर में जब वहाँ पर बालक उनको कोस रहे थे जंगल में, हाँ एक तरह से उनका मजाक उड़ा रहे थे, उसी दिन घर पर चर्चा हो रही थी कि अभी अपना कन्हैया बड़ा हो गया है, 5 साल तो पूरे हो रहे हैं उसके, अभी उसको बड़े गायों का जिम्मेदारी देना चाहिए। तो कल हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, कल का मुहूर्त अच्छा है अष्टमी का, हम ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक कन्हैया को गाय का जिम्मेदारी दे देंगे। लेकिन ये इसको पता नहीं है, तो परेशान है, जाके गुस्सा होकर सो गया है। अगले दिन ब्राह्मण आ गए, सब ग्वाल बाल तैयार हो गए, सब भगवान जब उठते सुबह तो पहले मुरली बजाते हैं, जब मुरली बजते उसके आवाज़ से ग्वाल बाल उठते हैं और झट झट के तैयार होकर वापस आते हैं। उस दिन कोई मुरली बजी नहीं, फिर भी वो तैयार होकर आ गए, सज धज के अपनी गायों को लेकर, उनको पता चल गया था कि बड़े गायों का जिम्मेदारी देने वाला है इनको आज, लेकिन ये तो उठे ही नहीं है, उल्टा मुंह करके सोए हुए हैं। ऐसा कहते हैं ना कि जो सोए हुए हैं उनको जगा सकते हैं आप, लेकिन जो सोने का ढोंग करते हैं उनको नहीं उठा सकते। तो मैया लोरी इस कान में गा रही है तो उधर कान कर रहे हैं, उस कान में गा रहे तो उधर देख रहे हैं, लेकिन उल्टा सोए हुए हैं बिल्कुल नहीं। बाद में मैया बोलती है, तुम क्यों आज बड़े गायों का जिम्मेदारी देने वाले हैं, तो झट से उठ के खड़े हो गए, एकदम एक्सप्रेस तैयार हो गए उस दिन, और फिर आ गए। सब नंद बाबा की 9 लाख गाय खड़ी थी, 108 झुंड में खड़ी थी, 108 प्रकार के झुंड हैं उनके, वो केवल उनके हैं, बाकी ग्वाल बालों की गाय अलग, हर ग्वाल बाल के अपने अपने गाय हैं, सब लाइन में खड़े हैं सज धज कर, सब गायों के ऊपर सोने के सिंगों के ऊपर कैप लगाई गई है, गले में सोने की घंटा है, हाँ सिल्क के क्लॉथ कपड़े पहनाए गए उनको, उनके पूंछों को मोर पंख लगाए गए हैं और सोने के अलंकार लगाए गए हैं, पैरों में घुंघरू लगाए गए हैं, इतना श्रृंगार किया है, हाँ हाथों से कुमकुम का निशान बनाया उनके ऊपर, तिलक लगाया उनको, उनको पूजक पूजन करके विधिवत तैयार है सब लोग अभी। तो मैया कहती है, ये दो छतरी लो और ये दो जो जोड़ी जूता है दोनों भैया पहन लो, अभी आज से आप दूर जाओगे तो कांटे होंगे, कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, रास्ता में कष्ट होगा पैरों का आपको, जूता पहन लो, धूप होगी दोपहर में छतरी धारण कर लो। तो भगवान कहते हैं, अगर आपके पास सारी गायों के लिए छतरी और जूता है, यानी कि 36 लाख जूता, 9 लाख गायों के 4 पाए यानी 36 लाख जूते हैं और 9 लाख छतरियाँ हैं, तो फिर हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम स्वीकार नहीं करेंगे इसको। तो मैया ने कहा, मेरे पास नहीं है, लेना है तो लो तो मत लो। उन्होंने कहा, नहीं लेंगे। ये सब संभाषण सब गाय सुन रहे थे, संभाषण का नतीजा उनको पता चला कि ऐसे होने वाला है कि ये जूता नहीं पहनने वाले हैं और उनके पैरों को कांटे लगेंगे, पत्थर लगेंगे, तो इतने मखमल जैसे, मक्खन जैसे मुलायम जो उनके कदम है, वो कितना पीड़ा होगी उनको, ये सोचकर गायें सब चारों दिशा में भाग गई और चारों दिशा में अपने पैर के खोरों से जितने भी पत्थर कंकड़ काटे थे उसको ऐसा पाउडर बना दिया, हाँ जैसे हम आज के तारीख में समझ सकते हैं टैल्कम पाउडर कैसा होता है, एकदम मुलायम, जमीन पर गिरेगा तो आप फिसल के गिर जाओगे उसके ऊपर, वैसा सब भूमि के रज को बना दिया। आज भी वो रज कुछ कुछ जगह ब्रज में मिलती है, हाँ एकदम मक्खन जैसे मुलायम, उस पर वर्षा हो गई, कोई पानी गिर गया तो आपको लगेगा मक्खन पे चल रहे आप। वो सब करके वापस आके खड़े हुए और उन्हें सबने, ग्वाल बालों ने और गायों ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम एक डिसीजन लेते हैं कि अभी रज तो मक्खन जैसी हो गई है, सब जानते हैं कि गायों के मन में इतना प्रेम है भगवान के लिए कि उनके थन जो है वो उनके शरीर से लेकर जमीन तक लग रहे हैं चलते समय, और भगवान के प्रेम पूर्वक भावना से उस पे से बूंद बूंद दूध हमेशा टपकते रहता है। लाखों गाय जब चरती है तो लाखों गाय दूध टपकाएंगी, तो जब जो जमीन जो है वो मक्खन जैसे जो रज है वो गिली हो जाएगी तो मक्खन ही पैदा होगा, फिर जब भगवान कृष्ण बलराम चलेंगे तो उनके चरण चिन्ह पैदा होंगे, तो हम पर हमको कभी भी उनके चरण चिन्हों पर चलना नहीं है, उनको बनाए रखना है, वो ब्रज का अलंकार बनेंगे उनके चरण चिन्ह जो है। और उसके आगे जितनी बार गौचारण हुआ, पता नहीं कैसे किया उन्होंने, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन ग्वाल बालों ने और गायों ने कभी भी आगे चलने वाले भगवान कृष्ण बलराम के 4 चरण चिन्हों के कभी पैर नहीं रखा, और इस तरह से सारी ब्रज भूमि के ऊपर भगवान कृष्ण बलराम के चरण चिन्हों का अलंकार फैल गया सब जगह पर। ये गोपाष्टमी की लीला है। अब जब भगवान जब लौट के आ रहे थे उस दिन बहुत दूर से आ रहे थे, नेचुरली रोज उनको पास पास जाने का आदत थी, लेकिन उस दिन दूर वन में गए तो थक गए, तो सब ग्वाल बाल बोले, अरे अगर इनका थका हुआ चेहरा मैया देखेगी तो क्या बोलेगी, कल नहीं जाना है, मेरा लाला थक जाता है। तो इसलिए जैसे घर आने लगा तो सब लोग ने विनोद करना, जोक करना, गाना बजाना शुरू किया ताकि हंसता हंसता दिखाई पड़ेगा मैया को, तो बोले कल भी भेजूंगी उसको। तो ये विशेष लीला गोपाष्टमी की है। जब लौट के आते हैं तो भगवान को रिझाने के लिए बहुत विनोद करते हैं, हास प्रयास करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, और भगवान को हंसाते हंसाते गुदगुदी करते करते घर लेट के आते हैं। बीच में एक और एक लीला होती है, भगवान कदम के झाड़ पे चढ़ जाते हैं अपने घर के पास आने के बाद, और भगवान अपनी छठी तान मुरली से बजाकर सारी गायों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो सुनकर भी अनसुनी करते हैं उनको उतार कर थपथपा कर लेके आते हैं, और सबको मुरली की तान में आकर्षित करके फिर गीत गाते हुए अपने घर चले जाते हैं। और नंद बैठक पे उनका स्वागत होता है, वहाँ से उनको नंद भवन पे लेके जाते हैं। आज भी ये उत्सव नंदगांव में बड़ी उत्साह से मनाया जाता है। गोपाष्टमी नंदगांव का एक सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वृंदा देवी और शालिग्राम का विवाह होता है। ये वृंदा देवी जो है वो किसी शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लिया उसने, और जलंधर नाम के राक्षस से उसका विवाह हुआ। और वृंदा देवी इतनी तपस्वी थी कि इसकी तपस्या के बल से जालंधर अपराजित हो गया। देवताओं को अनंत बार आक्रमण करके उसने परास्त करके भगा दिया। तो सब देवता परेशान होकर विष्णु के पास गए कि ये आदमी तो मर ही नहीं सकता है, हम कोई नहीं मार सकते उसको। तो भगवान कहते हैं कि ये देवता बताते हैं उनको, भगवान भी कहते हैं कि ये वृंदा देवी की तपस्या है, पतिव्रत्य है उसका। इस पतिव्रत्य की ढाल की वजह से, सुरक्षा कवच की वजह से जालंधर को आप कोई नहीं मार सकते हैं। अगर इसका पतिव्रत्य का भंग होगा तो फिर जालंधर का वध हो सकता है। तो भगवान ने कहा हम आएंगे, आप जाकर उसको युद्ध में ललकारो। हारे हुए देवता भगवान के कहने से दोबारा जालंधर को ललकारते हैं, और जालंधर ऐसा भयंकर युद्ध करता है, राक्षस युद्ध करता है कि देवता दोबारा परास्त होने लगते हैं। देवता परेशान हो जाते हैं, अरे भगवान ने कहा, लेकिन कर क्या रहे भगवान, किधर है भगवान। भगवान जालंधर बनकर वृंदा देवी के घर में प्रकट हो जाते, और घर में पति युद्ध से लौट कर आए ये समझकर उनके साथ वो संग करती है तो उसका पतिव्रत्य भंग होता है, और उस समय देवताओं का बाण जालंधर को लगता है और जालंधर का शीश कटता है। तो उसको भी आश्चर्य होता है, अरे ऐसे कैसे हो गया, मेरी पत्नी तो पतिव्रता है, उसके पतिव्रत के बल से मैं अपराजित हूँ, आज मेरा सर कैसे कट गया। तो वो सर जो है बाणों को लटका हुआ उड़ता उड़ता घर पे आता है, वृंदा वृंदा क्या हो गया। तो आवाज़ सुनते देखते, अरे पति तो मेरे शयन गृह में है और पति की आवाज़ बाहर से भी आ रही है। तो बाहर भाग के आते तो बाणों पे लटका हुआ सर जो है पुकार रहा है, वृंदा देवी क्या हुआ। तब क्रोध से वो उस बहुरूपिया यानी भगवान जो जालंधर बन के उसको देखती है, तो भगवान भी अपना जालंधर का रूप छोड़ देते हैं, मतलब बनाए रखना मुमकिन नहीं उनके लिए, विष्णु के रूप में आए। तो भगवान विष्णु को जालंधर को मरते हुए देखते हुए शाप देती है वृंदा देवी कि आप पत्थर बनोगे। तो भगवान विष्णु भी उसको शाप देते हैं कि तुम भी पौधा बनोगी और मैं तुम्हारे चरणों में रहूँगा। वैसे तो भगवान की महान भक्त थी वो, श्री विष्णु की महान भक्त थी, और भगवान ने तुलसी के पौधे को पृथ्वी पर उत्पन्न करने के लिए लीला किया था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन ये जो पत्थर रखते हैं ना हम, एक्चुअली शालिग्राम शिला होती है वो, लेकिन कई लोग पत्थर रखते हैं उस दिन, तो भगवान विष्णु का प्रतीक है। और भगवान विष्णु अपने वृंदा देवी से इतना प्रेम करते हैं कि उनके चरणों में अपने आप को रखते हैं और इस दिन उनका विवाह करते हैं। तो इस तरह से कार्तिक महीना संपन्न होता है। तो मैंने आपको कोशिश किया कि संक्षेप में ये सब लीलाओं का वर्णन करूं। अभी कार्तिक का जो महात्म्य है वो समझाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इन लीलाओं को मैं आपको विनती करता हूं कि आप कार्तिक महीने में विस्तार रूप से इसको पढ़िए। 30 दिन का टाइम मिलता है आपको, सबको बड़े विस्तार से इनके प्रवचन सुनिए, इसको पढ़िए, क्योंकि कार्तिक महीना जो है वो सभी शुद्धिकरण करने वाले सभी विधियों का सर्वोच्च विधि है। कार्तिक महीना प्योरेस्ट ऑफ ऑल प्योरेस्ट प्योरीफायर्स। कृष्ण और राधा को बड़ा प्रिय है ये महीना, भक्त वात्सल्य, भक्तों के प्रति जो वात्सल्य भगवान को उससे भरा हुआ है। छोटे छोटे से काम करने से बहुत विशाल लाभ इससे प्राप्त होता है। कार्तिक का व्रत का जो लाभ है वो 100 जन्म तक बना रहता है। इफेक्ट ऑफ कार्तिक व्रत, 100 जन्म तक लाभ मिलता रहता है। और कार्तिक व्रत जो करता है उसने पहले किए हुए व्रत को फल प्राप्त होता है कार्तिक में व्रत करने से। अगर कार्तिक का व्रत कोई करता नहीं है तो पहले जितने भी व्रत किए वो सब बेकार हो जाते हैं, ऐसा हरिभक्ति विलास में कहा गया है। जो व्यक्ति कार्तिक का व्रत नहीं करता है उसने जितने भी पुण्य कमाए उसकी राख हो जाती है, जितना भी वेदों को पढ़ा है वो निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। जितनी भी दान धर्म किया है, जप किया है, तपस्या किया है, वो सब बेकार हो जाती है, उसका फल नहीं प्राप्त होता है। जितने भी श्राद्ध अग्निहोत्र किए हैं वो निरर्थक बन जाते हैं, स्कंद पुराण में कहा है। वो जो कार्तिक का व्रत नहीं करता है वो माता पिता का हत्यारा और ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है और नरक में जन्म लेता है। पद्म पुराण में कहा है कि कृष्ण भगवान उसको त्याग देते हैं जो कार्तिक का व्रत नहीं करता है, और अगले जन्म में वो जानवर बन जाता है। इसलिए दामोदरम प्रपद्येहम श्री राधा रमणम प्रभुम प्रभावाद यस्य तत्प्रेष्ठाः कार्तिकः सेवितो भवेत्। मैं इस दामोदर महीने का शरण ग्रहण करता हूँ जो राधा रानी को बड़ा प्रिय है, और राधा रानी के प्रभाव से इस महीने में जो भी कार्तिक का व्रत करता है राधा रानी को बड़ा प्रिय हो जाता है। राधा रानी उस पर कृपा का वर्षाव करती है और कृष्ण का आश्रय और कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है। ऐसा ये महीना है। तभी कार्तिक व्रत न करने से क्या होता है वो बताया आपको मैंने, करने से क्या होता है बताता हूँ। कार्तिक व्रत करने से हमारे जितने भी, ऐसे कहा गया है कि कार्तिक जैसा व्रत किसी भी युग में किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं गया है। कार्तिक व्रत करने से हमारे जितने पूर्वज हैं नरक में कष्ट भोग रहे हैं वो सब कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक व्रत पालन करने वाली व्यक्ति को वैष्णव का स्थान प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने कभी भी जीवन में व्रत नहीं किया है, यज्ञ नहीं किया है, श्राद्ध नहीं किया है, पूजा नहीं किया है, वो सब कुछ करने का फल उसको कार्तिक व्रत करने से प्राप्त होता है। निश्चित रूप से उसको वैकुंठ में निवास प्राप्त होता है। कार्तिक में अगर विष्णु के मंदिर में आप रंगोली डालोगे तो श्री विष्णु के मंदिर में रंगोली यानी होता है ना वो कलर्स, जब बाहर अभी किया ना आप लोग ने, वैसे विष्णु के मंदिर में कार्तिक महीने में आप करोगे तो आपको दिव्य तेज प्राप्त होगा। कार्तिक के रूप महीने में भगवान विष्णु को भोग अर्पण करेंगे, नैवेद्य करेंगे, तो सारा कष्ट जो है जो 14 इंद्रों के राज्य काल में आपको प्राप्त हो सकता है वो एक ही क्षण में नष्ट हो सकता है। केवल कार्तिक महीने में सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त में, गिरिराज महाराज ने सुबह में सुन रहा था, सूर्योदय के 1:32 पहले से लेकर सूर्योदय तक इस समय पे आप केवल जगे भी रहोगे ना कार्तिक महीने में तो भी विष्णु का धाम आपको प्राप्त हो सकता है। और कार्तिक महीने के एकादशी के दिन और रोज रात को, एकादशी के दिन नहीं रोज रात को 12 से 3 तक जो जगे रहकर भजन करेगा वो भी भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करेगा। कार्तिक व्रत करने से कली को आप परास्त कर सकते हो, कली का प्रभाव आपके ऊपर नष्ट कर सकते हो। हरि कथा श्रवण कीर्तन कार्तिक में करने से हमारे परिवार के अनेक पुष्टि पीढ़ियां तार सकते हैं। ध्रुव महाराज ने कार्तिक महीने में भगवान का तपस्या पूजन करने से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। सारी ध्रुव लीला जो है इसमें जो 6 की तपस्या उसमें 1 जो है उन्होंने कार्तिक महीने में बिताया। गिरिराज महाराज बताते हैं कि कार्तिक महीना जो व्रत है वो भगवान का ग्रेट ग्रैंड रिडक्शन सेल है। हाँ, बहुत ही छोटा समय थोड़ा सा कष्ट करने से बहुत ज़्यादा लाभ भगवान ने इस महीने में प्रस्तुत किया है। तो हमको कार्तिक में क्या क्या करना चाहिए उसके मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। हाँ, इनमें से एक, इनमें से दो या इनमें सब कुछ करने से आपको दिव्य लाभ होगा, और हर एक चीज़ करने का लाभ वैकुंठवास है। इस जीवन के अंत में मुक्ति, भक्ति प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति और भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में निवास। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है, भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है और भगवान के सामने नृत्य करना है, वैष्णवों की सेवा करना है। इस महीने में वैष्णवों को भोजन कराने का बड़ा महात्म्य है, गौ सेवा करने का बड़ा महात्म्य है। आप गौ को लेकर ब्रश से साफ कर सकते हो, उनके चरणों को धो सकते हो, वो चारा खिला सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो। कृष्ण भगवान, राम भगवान और भगवान के अवतारों के लीलाओं का श्रवण आपको करना है, भगवान के विग्रहों की पूजा करनी है। इस महीने में पवित्र नदी में स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। पवित्र स्थान में जाकर पवित्र नदी में स्नान करना भगवान का नाम लेते हुए, इससे निश्चित सारे अनंत जन्मों के पापों का नाश होकर भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त होकर आप भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। इस महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, उसको हम बाद में अलग से बताएंगे। दामोदर भगवान को इस महीने में दीपदान करते हैं, और विशेष रूप से जिनको मुमकिन है वो भगवान के धाम में इस महीने में निवास करते हैं, चाहे 30 न हो, 10, 5, 20, 25 जितना भी आपको मुमकिन है, 1 क्यों ना हो, आधा दिन क्यों ना हो, कोशिश करके हमको इस महीने में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, भगवान के धाम में जाकर कुछ समय रहना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए। और वहाँ पर दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए या तो गायों का दान करना चाहिए या भगवान को भोग का दान करना चाहिए। इस महीने में विशेष रूप में श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवद गीता का पठन और श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पठन और शिक्षाष्टकम का पठन करना बहुत आवश्यक बताया गया है। और जो भी पठन आप करेंगे उस पठन के ऊपर चिंतन आपको करना चाहिए। अगर आप शिक्षाष्टक गाएंगे तो शिक्षाष्टक के अर्थ पर आपको चिंतन करना है, और गीता के श्लोक गाएंगे तो उसका चिंतन आपको करना है, और भागवत का कोई श्लोक पढ़ेंगे उस पर आपको चिंतन करना है। और विशेष रूप से सब लोग को ये सोचना है कि इस महीने में चाहे नव विवाहित हो या पुराने विवाहित हो या कैसे भी हो या ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो, सबको कड़क ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए इस महीने में। इस महीने में अगर आप कोई पुण्य कार्य करेंगे तो आपको पुण्य कार्य का लाभ नहीं मिलेगा। इस महीने में केवल भक्तिपूर्ण कार्य करेंगे तो ही उसका भक्तिपूर्वक फल मिलेगा आपको। ये महीना केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, लौकिक उन्नति के लिए नहीं है। फिर भी कार्तिक महीने का व्रत पालन करने से धन संपत्ति, संतान संपत्ति, यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और लास्ट में इस महीने में तुलसी की पूजा, तुलसी परिक्रमा, तुलसी सेवा, तुलसी परिचर्या का बड़ा महत्व है। रोज हम जब दीप दान करते हैं तुलसी को भी दीप दान करने का यहाँ पर आदेश दिया गया है। वह दीप दान का महात्म्य ऐसा है कि दीप दान, एक दीप दान जो घी के बाती में, बाती से किया गया है, बाती घी में डुबाया है और उसका दीप दान चाहे मिट्टी के पंक्ति में या तो और किसी में आप भगवान को अर्पण करते हो, विष्णु को अर्पण करते हो, तो इस महीने में एक भी दीप करने से भवलोक में दोबारा आदमी जन्म ले लेता है। एक कल्प जो है वो 1000 युगों का होता है, दिव्य युग, और एक जो दिव्य युग होता है वो 4 युगों से बनता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। इसके 43,20,000 साल होते हैं, इसको एक कल्प कहते हैं। ऐसे करोड़ों कल्पों में जितने आप पाप नहीं जमा कर सकते हो वो एक दीप दान करके आप नष्ट कर सकते हो। कार्तिक के दीप, एक दीप के सामने कोई कितना भी बड़ा पाप जो है वो टिक नहीं सकता है। यहां तक कि अगर आप किसी के बुझे हुए दीपक को जलाते हो या किसी को दीपक जला कर देते हो तो भी कार्तिक महीने में अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। मंदिर में होता है ना कोई लैंप खड़ा होता है और सबको दीप जला कर देता है, हाँ, उसको खुद के दीप दान का लाभ मिलता ही है लेकिन दूसरे का दीप जलाने का भी लाभ उसको मिलता है। कार्तिक महीने में जो अखंड दीप जलाता है उसको प्रदीप्त शरीर प्राप्त होता है, दिव्य तेजमान शरीर प्राप्त होकर वो तेजमान विमान में बैठकर वैकुंठ में चला जाता है। कार्तिक में जो विष्णु के मंदिर में दीप मालाएं लगाता है, हाँ, मतलब लाइन से माला लगाता है दीप की, और जितने दीप अर्पण करता है सुबह शाम मालाओं के साथ में इसमें उसमें सब जितने भी दीप अर्पण करता है उन दीपों के प्रकाश में ही वो भौतिक दुनिया से गौलोक प्रवेश करता है। उसका जो मार्ग है यहाँ से भौतिक दुनिया से वैकुंठ जाने का वो उन दीपों के प्रकाश से प्रज्वलित होता है। ब्रह्मा जी स्कंद पुराण में नारद मुनि को कहते हैं, एक कथा बताते हैं कि आप जानते हैं ना चूहा होता है ना, वो जब भी घी का कोई बाती होता है या घी का दिया होता है जाके वहाँ मुंह लगाता है खाने के लिए जाता है, तो ऐसा कार्तिक में एक दीपक लगाया गया था, किसी व्यक्ति ने लगाया था अपने घर में, और वो उसका घी खाने के लिए जब भी चूहा चला गया तो उसके चूहे के चोंच से जो दीप हिला गया तो दीप प्रज्वलित हो गया, उतना करने से उस चूहे को मनुष्य का जन्म प्राप्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं स्कंद पुराण में। तो इसलिए हम सबको कार्तिक महीने में कभी भी दीप दान करने को भूलना नहीं है। अभी कार्तिक का जो व्रत है ये बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है। कार्तिक का व्रत न करने वाले को मनुष्य जन्म उसका नष्ट हो जाएगा, जानवर बनना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, भगवान उसको रिजेक्ट करेंगे, सारे व्रत के फल नष्ट हो जाएंगे। इतना सब नष्ट होने के बदले में तो व्रत जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसके 2 प्रकार के व्रत होते हैं। एक व्रत में हम लोग कुछ छोड़ देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मीठा नहीं खाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारी प्रिय वस्तु नहीं खाएंगे, प्रिय वस्तु नहीं पहनेंगे, ऐसे निषेध बोलते हैं उसको कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बच्चे कहेंगे हम चॉकलेट नहीं खाएंगे, तो इस प्रकार के व्रत को निषेध कहा गया है। वो भी एक व्रत है, उसका भी महत्व है, ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक होता है विधिव्रत व्रत, यानी कि आपको कुछ करना है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि आप कहेंगे कि मैं रोज एक भगवद गीता का श्लोक पढ़ूंगा, उसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ूंगा, रोज एक भागवतम का श्लोक और तात्पर्य पढ़ूंगा, दो माला रोज एक्स्ट्रा करूंगा, इसको विधिवत व्रत कहते हैं, पॉजिटिविटी। हाँ, मैंने एक बार हमारे गुरुदेव से पूछा था, आपका व्रत क्या है महाराज? सब लोगों ने व्रत लिया हुआ है, बच्चों ने आइसक्रीम छोड़ दिया है, स्वीट छोड़ दिया है, आपका व्रत क्या है? तो महाराज ने कहा कि मैं 16 माला जप और 4 नियम का पालन अधिक ध्यान पूर्वक करूंगा, ये भी एक व्रत है। हाँ, तो हम लोगों को एक ध्यान रखना है कि कार्तिक का व्रत लेते हुए आप आसान व्रत लीजिए जो आप पूरा कर सकते हो। ऐसे कठिन व्रत और अनेक प्रकार के व्रत एक साथ मत लीजिए जो आपको आगे जाकर पूरा करने में मुश्किल होगी और आपका व्रत पूरा नहीं होगा। ऐसा कहा गया कितना भी अल्प सा व्रत क्यों ना हो उसकी भी महिमा आगाध है। कार्तिक का नियम यह है कि कोई ना कोई व्रत जरूर लेना चाहिए, इसलिए आप छोटा सा व्रत क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलेंगे कि मैं एक माला एक्स्ट्रा लूंगा रोज, तो भी आपका कार्तिक का व्रत संपन्न हो जाएगा। इसलिए सब लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि कार्तिक का व्रत जरूर आपको लेना है। आज 2 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर को रास पूर्णिमा है, उस दिन कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, दामोदर मास शुरू हो रहा है, आपको 14 दिन मिलते हैं सोचने के लिए कि आप क्या कर सकते हो। और निषेध व्रत जरूर लेना, लेकिन विधि व्रत लेने को भूलना नहीं, पॉजिटिव कुछ कार्य करना चाहिए आपको, खास करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर जप करना, ये कार्तिक का एक व्रत हो सकता है। रोज नियम से घर में या मंदिर में जाकर मैं दीप दान करूंगा, ये भी सुंदर व्रत हो सकता है। रात को नहीं खाऊंगा, केवल फलाहार करूंगा और दिन में एक भोजन करूंगा, जो सन्यासी गण होते हैं ना वैष्णव में, सन्यासी गण इसमें ऐसा व्रत लेते हैं कि दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, वो भी घुटने पर खड़े हो जाते हैं, हाथ पीछे बांध देते हैं और घुटने पर खड़े होकर जो सर झुकाकर प्लेट में से मुंह से जितना खा सकते हैं एक बार उतना ही खाते हैं, एक ही बार झुकने में, झुके रहने पर जितना खा सकते हैं मुंह से पत्तल में से, जनरली खिचड़ी खाते हैं वो, ऐसा सन्यासियों का व्रत होता है, विरक्त लोगों का। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि हम धान्य जो है दिन में एक ही बार खाएंगे, बाकी 2 बार फल खाएंगे, ये भी कार्तिक का व्रत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट व्रत कार्तिक का यह है, तुलसी पूजा, अर्च विग्रहों की पूजा, श्रीमद् भागवतम श्रवण, वैष्णवों की सेवा। इस महीने में वैष्णवों को घर पर प्रसाद के लिए बुलाना बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है। कार्तिक का व्रत जो है 30 दिन हम करते हैं, उसको छोड़ने की भी एक विधि है, अपने हाथों से भोजन बनाना है और ब्राह्मण वैष्णवों को घर पर बुलाना है और उनको भोजन कराना है, और उस दिन भी आपको धान्य नहीं खाना है, और अगले दिन कार्तिक महीना खत्म होने के बाद जो दूसरी प्रथमा आएगी उस दिन आपको धान्य खाकर व्रत छोड़ना है, ये शास्त्र में विधान किया गया है। कुछ लोग विश्व पंचक का पालन करते हैं, ये भी बहुत पावरफुल विधि मानी गई है। इसका पालन करने का विधि भी ऐसा ही है कि विश्व पंचक पालन करने वाला व्यक्ति अन्न से परावृत्त होकर केवल पराल, जो उपवास का अन्न होता है, वो खाता है, फल खाता है केवल, और भगवान के नाम का अधिक जप करता है, शास्त्रों का श्रवण करता है और पठन करता है, और 5 दिन व्रत रखने के बाद में 5वें दिन पूर्णिमा के दिन वैष्णव को घर में बुलाता है, अपने हाथ से धान्य के पंच पकवान स्वादिष्ट भोजन बनाता है, वैष्णवों को भोजन कराता है, उनको दक्षिणा देता है, उनके चरण छूता है, उनका आशीर्वाद की याचना करता है, उनको संतुष्ट करके दक्षिणा देकर भेजता है, फिर अगले दिन धान्य ग्रहण करके अपना व्रत छोड़ता है। ये विष्णु पंचक का व्रत का वर्णन है। कार्तिक में क्या नहीं करना चाहिए? कार्तिक में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, मैंने पहले बताया। कार्तिक में जो अन्न दूसरों के लिए देना है आपको, दूसरों के हिस्से का है, दूसरों के अधिकार का है, उसको कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों के बिस्तर पर नहीं सोना है, अपने ही बिस्तर पर सोना है, अपने ही गद्दे पर, अपने ही चादर पर सोना है, और हो सके तो कार्तिक महीने में जमीन पर सोना है जिनको मुमकिन है। कार्तिक में दूसरे के किसी भी धन पर ग्रहण करने की इच्छा रखनी नहीं चाहिए। अगर कार्तिक महीने में जो अपना धन नहीं है, जो पराया धन है, उसको अगर आप लेते हो तो नरकवास निश्चित है। कार्तिक में कोई भी राजसी खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चटपटा, मसालेदार, तला हुआ, ऐसा जो होता ना, जैसे कि राजमा, ऐसा वर्णन किया है उसके अंदर, कुलित, राजमा, बैंगन, जो राजसी अन्न है, वो कार्तिक महीने में नहीं खाना चाहिए। कार्तिक महीने में जो भोगी व्यक्ति हैं और जो अभक्त हैं, इनका संग नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रयत्न पूर्वक असत्संग कार्तिक में नहीं करना है। जो व्यक्ति पैसे से हाँ या व्यभिचार से या सेक्स से ज़्यादा अटैचमेंट है उनको, ऐसे व्यक्तियों का संग जो भक्त होने पर भी आग लगता है कि जो बहुत पैसे में इनका मन लगा हुआ है, उनका संग कार्तिक में नहीं करना चाहिए, तो कार्तिक का व्रत भंग हो जाता है, ये ध्यान रखना इस बात का। अभी अगर आप ब्रज में रहने जा रहे हो कार्तिक महीने में तो क्या क्या करना है आप सोच लीजिए। राधा कुंड के अपीयरेंस डे बहुलाष्टमी के दिन हो तो राधा कुंड में आप आचमन स्नान कर सकते हो। विशेष रूप में जो पहला पक्ष है रास पूर्णिमा के बाद में जो अमावस्या तक का पक्ष है उसमें त्रयोदशी आती है, उसको कृष्ण त्रयोदशी कहते हैं। उस दिन में भगवान विष्णु के साथ में यमराज के लिए एक दीप दान करना चाहिए। का कारण यह है उस दिन कृष्ण त्रयोदशी के दिन ये वर्णन भगवान कृष्ण सत्यभामा देवी को कर रहे हैं पद्म पुराण में। भगवान ने कहा है कि कार्तिक मास के कृष्ण त्रयोदशी के दिन एक दीपक अलग से यमराज को अर्पण करना चाहिए जिसमें अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है। चतुर्दशी के दिन भी धर्मराज का पूजा यानी यमराज की पूजा करनी चाहिए। यमराज की प्रतिमा नहीं हो तो मन से यमराज की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पूजन करना चाहिए, हो गया। प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, अन्नकूट अर्पण करना चाहिए, अन्नकूट में भाग लेना चाहिए और गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। गोवर्धन गोपाष्टमी के दिन और गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा करनी चाहिए। द्वितीया के दिन जमुना में भाई और बहन साथ में स्नान करना चाहिए। गोपाष्टमी के दिन गायों की सेवा करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए और अगर रथ यात्रा कहीं द्वादशी को हो रही है तो उसमें भाग लेना चाहिए। इस प्रकार से कार्तिक का व्रत संपन्न करने का ये बहुत महत्वपूर्ण मौका हमको प्राप्त हो रहा है। उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कार्तिक व्रत को चयन करते समय हमारी चेतना जो है वो उस व्रत के टेक्निकलिटी जो तांत्रिक बातें हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा भावना भक्ति का जो है वो दीपक के अंदर के घी से अधिक महत्वपूर्ण है। घी का लैम्प तो आप दे रहे हो लेकिन उसके ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हमारी भावना और भक्ति है। हमारे कार्यों में जो मग्नता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कार्तिक में। और जो कार्तिक का व्रत इस भावना से चेतना से और भक्ति से करता है उसके शरीर में देवता प्रवेश करते हैं, उसका संग चाहते हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों को कार्तिक महीने में इनमें से किसी भी एक व्रत को लेने के लिए विनती करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण दामोदर भगवान जी और इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी को प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका कार्तिक महीने में व्रत सफल हो, संपन्न हो और राधा रानी की प्रेम भक्तिपूर्ण कृपा आप सबको प्राप्त हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।